كثير، سورة القصص مکی سورت ہے، اس کے 9 رکوع، 88 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 1454 1454، جبکہ حروف 6011 6011۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 سے 25 سے اس کا نام لیا گیا ہے، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ، یہ وہ سورت ہے جس میں القصص کا لفظ آیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ قصص کے معنی ہوتے ہیں ترتیب وار واقعات بیان کرنا، اور یہ وہ صورت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان ہوا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دعوت اللہ کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کے قصوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر اس صورت کا نام القصص رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا مقصد ان شبہات اور اعتراضات کو دور کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیے جا رہے تھے، ان اعتراضات کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، ان کو قطع کرنا ہے جو آپ پر ایمان نہ لانے کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ سورت القصص کا جو زمانہ نزول ہے، سورت الشعراء، سورت النمل جو ہے اسی کے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ زمان، اس سورت کی جو زبان ہے، انداز بیان اور اس کے مضامین، اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ سورت الشعراء، سورت نمل اور سورت قصص، یہ تینوں سورتیں قریبی زمانے میں نازل ہوئیں۔ اور اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزاء کو جو ان تین سورتوں میں بیان ہوئے ہیں آپ مل کر پڑھیں تو پورا ایک قصہ بن جاتا ہے۔ جیسے سورت شعراء میں نبوت کا منصب قبول کرنے سے موسیٰ علیہ السلام کا معذرت کرنا، اور اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ قوم فرعون کا ایک جرم میرے ذمہ ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے تجھے بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو ہمارے پاس چند سال رہ گیا، پھر رہ کر کر گیا جو کر گیا۔ وہاں پہ تفصیل نہیں بتائے گی کہ کیا کر گئے تھے۔ پھر سورت نمل میں آپ پڑھتی ہیں کہ یکا یک اچانک جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آگ دیکھتے ہیں، تو کیا پتا چلا کہ آپ کو نبوت مل گئی۔ تفصیل نہیں ملتی کہ سفر کیسا تھا، کہاں سے آ رہے تھے، کدھر جا رہے تھے۔ اب مزید جو اس کی باقیات ہیں وہ اس صورت میں آپ کو ملیں گی۔ تا، سین، میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ تلک، یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ تلک جو ہے یہ اسم اشارہ بعید ہے، اور اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ویسے اس کے لیے ذالکا آنا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں پہ تلکا آیا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے آنے کا؟ کہ قرآن مجید کی عظمت کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی عظمت والی کتاب کی آیات ہیں جو حق اور باطل، خیر اور شر، ہدایت اور گمراہی کو انسانوں کی خیر خواہی کے لیے کھول کر بیان کرتی ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، اور المبین لازم اور متعدی دو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، کہ خود واضح ہے اور جو پڑھتا ہے تو اس کی بھی زندگی واضح ہو جاتی ہے، خود روشن ہے اور اس کی زندگی میں بھی ایک روشنی آ جاتی ہے، ہدایت آ جاتی ہے۔ نتلو علیک من نبا موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نتلو علیک، ہم जो है वो सुनाते हैं, हम बयान करते हैं अलैका आप पर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सुनाते हैं तुझ पर, मिन नबा मूसा, मूसा अलैहि सलाम के हालात में से। नबा बड़ी खबर को कहते हैं, और यहाँ पे ये नहीं कहा कि सारा मूसा अलैहि सलाम का वाकया, मिन नबा मूसा, तो मूसा अलैहि सलाम का जो बड़ा वाकया था उसमें से कुछ, और फिर औना और फिरौन के वाकये में से भी कुछ, तो मिन नबा मूसा व फिर औना, तो मूसा और फिरौन का कुछ हाल, कुछ वाकया आपको सुनाते हैं बिलहक की ठीक ठीक। कौमे यूमिनून, ऐसे लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाते हैं। अब आप देखिए कि अगर नबियों का जिक्र करें तो आमतौर पे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले आता है और तफसील के साथ किया गया है। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर थे और इन्हें बड़े सख्त और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। इनकी कौम गुलाम कौम थी, बड़ी ही जिल्लत रुसवाई और बदहाली की जिंदगी गुजार रही थी। फिरौन अपने जुल्म की तमाम हदें जो है वो क्रॉस कर चुका था, तो मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों की जो फतह है दरअसल, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों के लिए एक खुशखबरी है, एक बशारत है कि कितने सख्त हालात थे, कितने मुश्किल हालात थे, लेकिन बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोग जो थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फिरौन के जुल्मों निजात से, फिरौन के जुल्मों सितम से निजात दे दी। बिल्कुल इसी तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों के हालात जो हैं वो बदलेंगे। नतलु अलैका मिन नबा मूसा व फिरौन बिल हक्की लिकौमी युमिनून, हम मूसा अलैहि सलाम और फिरौन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे लोगों के फायदे के लिए जो ईमान ले आए। तो इसे मुराद क्या है कि आपके ईमान की पुख्तगी के लिए हम ये वाकया सुना रहे हैं कि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की फतह, अल्लाह की मदद जो है वो आकर रहती है, जैसे कि मूसा अलैहि सलाम पर आई थी। इन्ना फिरऔन आला फिल अर्दी व जाला आलाहा शिया अन यस्तदइफू ताइफतम मिनहुम युज़बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन। अब यहां से जो है वो फिरौन का वाकया जो है वो बयान किया जा रहा है, और फिरौन की कहानी को पेश करते हुए आप देखें कि सबसे पहले अल्लाह ताला उसका तारुफ कैसे कराते हैं, इन्ना फिरौना, कि बेशक फिरौन, अला फिल अर्दी, अला जो है उसने सरकशी की जमीन में, ऐन लाम वो इसका रूट है। फिरौन कौन था? ये मिस्र का बादशाह, इसका नाम था वलीद बिन रैयान, फिरौन के लकब से जाना जाता था, अपनी हुकूमत और बादशाहत में बहुत आगे बढ़ गया था। कि इसने क्या सरकशी की थी कि अपने रब और माबूद होने का दावा किया था। इन्ना फिरऔना अला फिल अर्द, फिरौन ने जमीन में सर उठाया, बागियाना रविश इख्तियार की, बंदगी के मकाम से उठकर खुद मुख्तारी और खुदावंदी का रूप धार लिया। इसको मतहत बनकर जीना चाहिए था, ये खुदा बन गया, जब्बार और मुतकब्बिर बनकर जुल्म ढाने लगा। इन्ना फिरऔना अला फिल अर्द, नंबर दो, वजाला अहला शियान, वजाला और इसने बनाया अहला इसके बाशिंदों को, तो वो लोग जो के जो है वो मिस्र में रहते थे, उसके बाशिंदे जो थे, जैसे खास तौर पर बनी इसराइल के जो लोग और वैसे वहां के जो बाशिंदे थे, क्या करता था उनको? शियान, शीन या और आयन, और इसका जो रूट है वो शीन अलिफ आयन भी बताया जाता है। इसके मानी होते हैं मशहूर करना, फैलाना, और एक राय और मजहब के लोगों को भी कहते हैं, जैसे शिया यानी एक राय या एक मजहब या एक अकीदा जो रखने वाले हैं उनके लिए भी। और वैसे ये लफ्ज जो है ये ग्रो के लिए, जमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फरमाया कि उसने जो है वो जो मुल्क था उसके बाशिंदों को आपस में तकसीम कर दिया था। वो लोगों को आपस में जो है वो बांटता था। और इसका रूट क्या है? शीन या ऐन। तो उसने वहां के लोगों को जो है वो बांट रखा था, उसके फिरके बना दिए थे। मानी है कि ग्रो दर ग्रो उनके आपस में कई ग्रो बना दिए थे। बनी इसराइल के लोगों को टोलियों में बांटकर उनसे गुलामों की खिदमत लेता था। और जब आप देखें कि कौम को ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाए तो ग्रोह बंदी जब उसमें हो जाती है तो फिर क्या होता है कि हुक्मरान ग्रोह जो है वो महकूम ग्रोह को दबाता है, पीसता है और लूटता है। तो उसके भी हुकूमत का कायदा क्या था कि कानून की निगाह में मुल्क के जो बाशिंदे थे सबके कानून एक जैसे, सबके हकूक एक जैसे नहीं थे। आमतौर पे आप देखें कि आप यहाँ के सिटीजन है तो सबके हकूक एक जैसे हैं। तो कोई भी किसी कंट्री का रहने वाला होता है तो सबके राइट्स बराबर होते हैं, सबको बराबर के हकूक दिए जाते हैं। लेकिन उसने क्या किया था, उसका ये अंदाज था कि मुल्क के बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम करता था, किसी को रियायतें देता था और किसी को नहीं देता था, किसी को ऊंचा तबका कहता था हुक्मरान करो और किसी को महकूम बना देता था, किसी को पीसता था और लूटता था, किसी को मरा देता था। और खास तौर पे उसने बनी इसराइल को मुख्तलिफ टोलियों में बांट रखा था और उसके उनसे गुलामों की खिदमत लेता था। तो दूसरी बात है कि वजाला अहला शियान यस्तदिफु ताइफतम मिनहुम, यस्तदिफु बाद ऐनफा और इसके मानी है जईफ यानी कमजोरी के। तो उसने कमजोर कर रखा था, यस्तदिफु उसने कमजोर कर रखा था ताइफतम मिनहुम इनमें से एक ग्रोह को, और एक ग्रोह जो था उसका जोर उसने घटा रखा था। फिर तीसरी बात युसब्बिहु अबना अहम कि वो उनके बेटों को कत्ल करता था। तो क्या करता था कि जो लड़के थे उनको वो कत्ल करता जाता था। और इस सिलसिले में जो है वो फिरौन को ये बात पता चली थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से ये खुशखबरी मुंतकिल होती चली आ रही थी कि इनकी नस्ल से एक बच्चा होगा जिसके हाथों जो मिस्र की सल्तनत है इसकी तबाही होगी। तो कुप्तियों ने जो फिरौन फिरौन के साथी थे उन्होंने ये खुशखबरी बनी इसराइल से सुन ली और फिरौन को आगाह कर दिया, जिस पर इसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। एक राय तो यह है कि उन्हें जो है वो बनी इसराइल से पता चल गया था। दूसरी राय यह है कि नजूमियों ने यह पेशीन गोई की थी कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले एक बच्चे के हाथों फिरौन की हिलाकत होगी और इसकी हुकूमत का तख्त जो है वो उलट दिया जाएगा। इसका इसने मशवरे से ये हल निकाला कि हर पैदा होने वाले इसराइली बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। तो ये है कि युज़ब्बिहु अबनाहुम कि वो इसके लड़कों को कत्ल करता था। पांचवी बात क्या थी, वयस्ताही निसा अहुम और इसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। तो औरतों को जिंदा रखता था, क्यों? ताकि इस तरह जो है वो औरतों को जो है वो तंग कर सके, उन पे जुल्मों सितम कर सके और उनको जो है वो बांदियां बनाकर जो है वो खिदमत ले सके। और किसी कौम की दुनिया में ये सबसे बड़ी आजमाइश होती है कि उसके बच्चों को जो है वो कत्ल करने के लिए पेश कर दिया जाए। और अल्लाह ताला इसकी इस आजमाइश को बलाउन अजीम के नाम से भी याद करते हैं, इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, फिल वाके वो फसादी लोगों में से था। तो आप देख लें कि ये आयत नंबर 4 में फिरौन की जो सरकशी है, जो उसने सरकशी दिखाई, उसकी चार पांच बातों को पेश करके अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जमीन में फसाद पैदा करने वाला था। तो उसको अल्लाह ताला ने क्या टाइटल दिया है, फसाद फिल अर्द का मुजरिम करार दिया है। तो ये था फिरौन। तो ये जो कुछ वो कर रहा था ये जो फितरी अमल है ये उससे हटकर था, ये अल्लाह के निजामे फितरत जो है उसको बिगाड़ रहा था। अल्लाह का निजामे फितरत क्या है कि इसलाह की जाए, लेकिन वो मदाखलत करके फसाद पैदा कर रहा था। अल्लाह ताला आयत नंबर 5 में कहते हैं कि व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना स्तुद्इफू फिल अर्दी व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। फरमाया कि मनुरीदु, और हम इरादा रखते थे, अन्न मुन्ना कि हम एहसान करें, हम मेहरबानी करें, अल्लज़ीना उन लोगों पर, इस्तुद्इफू जो कमजोर कर दिए गए हैं, फिल अर्दी जमीन में, मुराद है यहाँ पे बनी इसराइल के लोग। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा ये फैसला था कि मैं बनी इसराइल को जो है वो क्या करूं कि मैं उसे इज्जत दूं, उन्हें इकतदार दूं, क्यों वो जमीन पर जलील कर दिए गए थे, व नजअलहुम अइम्मतन और मैं इनको बना दूं इमाम पेशवा, और मैं इन्हें जो है वो पेशवा बना दूं, इन्हें दुनिया में कयादत और रहनुमाई का मकाम दूं, व नजअलहुमुल वारिसीन और इन्हें जो है वो वारिस बना दूं, जमीन की विरासत दूं, मुराद है हुक्मरानी दे दूं। तो इज्जत और बेइज्जती का जो फैसला है ये अल्लाह की तरफ से होता है। अब फिरौन क्या चाहता था कि अल्लाह के फैसले से हटकर करना चाहता था, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और इन कमजोर बंदों पर अल्लाह ताला ने रहम किया, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, इन्हें फिरौन की गुलामी से आजाद करके अल्लाह ताला ईमान जैसी अजीम नेमत से नवाजना चाहते थे। फिरौन इसके लश्कर को हिलाक करना चाहते थे और बनी इसराइल को जो है वो जमीन का वारिस बनाना चाहते थे। आयत नंबर ये जो 5 है इसमें अइम्मतन जो लफ्ज है इसका रूट है हमजा मीम मीम, और भी इसी से है, इमाम भी इसी से है, और पेशवा के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सरदार पेशवा। और अब आप मुसलमानों के हालात पर गौर करें कि तभी एक जमाना था कि मक्का की बद्दू कौम जो थी, जब वो ईमान लाई तो कैसरो किसरा के तख्त और ताराज की मालिक बन गई। दश्त तो दश्त है, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक वो जमाना था और वो किरदार की कुव्वत थी, और एक आज मुसलमानों पर देखें तो हर तरफ जो है वो उदासी, गम, जिल्लत, उसके साए जो है वो मंडलाते हुए महसूस होते हैं। याद रखें कि आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं, हम गुलामी की बजाय जो है वो आजाद होकर जो है वो जिंदगी गुजारें, तो हमें ईमान जो है ना उसको तलाश करना होगा, अपने ईमान को जिंदा करना होगा, हमें अपने ईमान को कवी करना होगा, ईमान के अंदर एक हरारत पैदा करनी होगी, क्योंकि बगैर ईमान के खाली दावा करने से जो है ना वो हालात नहीं बदलते। फरमाया आयत नंबर 6 सूरत अल-कसस में, वानु मक्की ना लहुम फिल अर्दी, और हम ताकत दें, हम जमाव अता करें, जैसे मीम काफ नून, कुदरत देना, मकान देना, ताकत देना, और हम जो है वो ताकत अता करें, कुव्वत इक्तदार अता करें, लहुम बनी इसराइल को लिए, उनके लिए, फिल अर्दी जमीन में, और जमीन में इनको इकतदार अता करें, व नुरिया फिरऊन व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम्मा कानू यहज़रून। फरमाया व नुरिया, और हम दिखा दें फिरऊना फिरौन को, व हामाना और हामान को, और कि हम फिरौन को और हामान को जो है ये दिखाना चाहते थे। और आप देखें कि बात सिर्फ फिरौन की नहीं है बल्कि हामान की भी है। तो फिरौन के साथ जो हामान था वो कौन था, वो भी उसका जो है वो वजीर था और वजीरे तामीरात था, उसके मशीरों और दरबारियों में से था। फरमाया कि हम जो है वो फिरौन को और हामान को दिखाना चाहते थे। जुनूदहुमा, और इन दोनों के लश्करों को, कि हम फिरौन को, हामान को और इनके लश्करों को वो दिखाएं, मा कानू यहज़रून, जिससे वो डर रहे हैं। यानी अब फिरौन और हामान जो थे वो किस चीज से डर रहे थे? वो इस बात से डर रहे थे कि एक बनी इसराइली के हाथों फिरौन की और इसके मुल्क की और इसके लश्कर की तबाही होगी, और इनकी जो हुकूमत है उसका जो तख्त है वो उलट दिया जाएगा। तो ये बात जो है इतनी नहीं थी कि सिर्फ फिरौन जो है वो डर रहा था, बल्कि फिरौन के साथ साथ जो हामान था वो भी डर रहा था। और हामान कौन था? ये फिरौन का जो है वो वजीर तामीरात था, क्योंकि फिरौन ने हामान से कहा था ना, जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा, जिस पर चढ़कर मैं मूसा के अल्लाह को देख सकूं, मैं तो उसे झूठा ही समझता हूं। तो ये था हामान, और बहुत मालो दौलत का वो भी मालिक था, लश्करों का मालिक था। यहाँ पे उसका जिक्र किया जा रहा है कि फिरौन, हामान और इनके लश्करों को वो दिखाएं जिससे वो डर रहे हैं। वो उनको क्या डर था? कि उनकी हुकूमत खत्म ना हो जाए। और अल्लाह ताला जो है वो क्या करता है कि अल्लाह जब किसी चीज का फैसला कर लेता है तो उसको खत्म कर देता है। तो उन्हें ये डर था कि बनी इसराइल हमारे मुद्दे मुकाबिल खड़े होकर हमारी हुकूमत और सल्तनत को छीन ना ले। वअहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिए। अब यहां से मूसा अलैहि सलाम की जो नेक वालदा हैं, इनका वाकया शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वअहैना, और हमने हुक्म दिया मूसा अलैहि सलाम की वालदा को। और वही जो है वो हाया, इसके लफ्जी मानी है, लुगवी मानी है इशारा करना, दिल में बात डाल देना। तो हमने मूसा अलैहि सलाम की जो वालदा हैं इनके दिल में ये बात डाल दी। और मूसा अलैहि सलाम की पैदाइश के जमाने में जब बनी इसराइल के लड़के जिबा किए जा रहे थे, हिला किए जा रहे थे, तो मूसा अलैहि सलाम जब पैदा हुए तो इनकी वालदा बहुत ही परेशान थी। और एक राय ये भी है कि आपको ख्वाब में ही ये तदबीर बता दी गई थी कि जब बच्चा पैदा हो तो एक छोटी सी टोकरी में या कश्ती में रखकर दरियाए नील में डाल दें। तो उन्होंने जो है वो छोटी सी टोकरी और कश्ती में रखकर फिरौन के मतलब तो वो जो महल के पास से एक दरिया बहता था तो उसमें उन्होंने डाल दिया। तो यहां पर भी यही बात है। और क्या फरमाया कि वअहैना इला उम्मे मूसा, कि हमने मूसा अलैहि सलाम की वालदा को इशारा किया, हुक्म दिया, अन अर्दिही। और ये जो है ये ऑर्डर का सीगा है, और अर्दिही जो है रा द्वाद ऐन, दूध पिलाना, रदात, तो अर्दिही उसे दूध पिलाती रह, तो ही की जमीर मूसा अलैहि सलाम के लिए आई है। इशारा ये किया कि इसको दूध पिला, पिलाती रह दूध, कब तक? फैजा खिफ्ती अलैही, जब तुझे इसकी जान का खतरा हो जाए, कि जब तुझे जो है वो हुकूमत की तरफ से खौफ हो कि बच्चे की जान का खतरा है, क्योंकि फिरौन के जासूस जो थे वो लोगों के घरों में पता करते रहते थे। यानी औरतें उन्होंने मुकरर की हुई थी कि कहीं कोई औरत जो है वो हमला अगर हुई है तो उनको खबर दी जाए। और फिर उसके बाद जो ही बेटा पैदा हो जाता था, या यानी बच्चा पैदा होता था उसमें बेटा होता था, तो फिर उसको जो है वो सिपाही आते ले जाते और उसको फिर कत्ल कर देते। तो कहा कि इसको दूध पिलाती रहे, फैजा खिफ्ती अलैहि, जब तुझे इसकी जान का खतरा हो, फअल्की, फिर इसको डाल दे, फिर यम्मी दरिया में, वला तखाफी, और कुछ खौफ ना करना, वला तहजनी, और गम ना करना। अब आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह ताला ने कितने हुक्म दिए। नंबर एक, कि इसको दूध पिलाती रहे। नंबर दो, जब तुझे इसकी जान का खतरा हो तो इसको दरिया में डालना। नंबर तीन, वला तखाफी, फिर खौफ न करना। कितनी अजीब बात है ना, कि बगैर खौफ के, बगैर किसी खतरा के, बगैर किसी खतरे के दरिया में डाल देना। अब आप देखें कि दरिया में डालना उसका मतलब है कि उसको मारना है ना, जैसे क्योंकि आमतौर पे दरिया में जो है वो बच्चा अकेला जा रहा हो, उसको डाल दिया जाए तो वो तो डूबेगा ना, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा वला तखाफी, और खौफ ना करना। नंबर तीन, फिर साथ ही कहा कि वला ताहजनी, और गम ना करना। तो दो हुक्म दिए हैं और दो चीजों से मना किया है। हुक्म क्या है? दूध पिलाना है और जान के खतरे की शक्ल में इसको दरिया में डाल देना। और दो का ये काम जब कर लो, नंबर एक खौफ नहीं होना चाहिए तुझे ये काम करते वक्त, और ना ही तुझे कोई गम होना चाहिए। फिर इसके साथ अल्लाह ताला ने दो तसलियां दी हैं, इन्ना रादूहू इलैकी, हम इसे तेरे ही पास वापस ले आएंगे। इन्ना यहाँ पे ताकीद है कि बेशक ये बच्चा जो है इसे तेरे वापस तेरे पास इसको पहुंचा देंगे। रादूहू, ये सब फाइल है, हम इसको वापस जो है वो पहुंचा देंगे, फेर देंगे, लौटा देंगे, इलेही की तेरी तरफ। नंबर दो, वजाइलूहू मिनल मुरसलीन, और इसको हम पैगम्बरों में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे खुशखबरी दे दिया साथ ही। अब आप देखें ये दोनों खुशखबरियां हैं कि ये बच्चा वापस तेरे पास आएगा, बस कुछ देर के लिए तुझसे जुदा किया जाएगा, और नंबर दो, ये बच्चा बड़ा होकर पैगंबर बनेगा। अब आप देखें कि कितनी अजीब बात है कि उसकी जान का खतरा है और अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं कि ये जो है इसको पैगंबर भी बनाया जाएगा। तो ये दरअसल क्या है, ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, ये अल्लाह ताला ने उनको वही की है। और ये जो काम किया था ना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने, अल्लाह के इशारे पर किया था। अल्लाह ताला ने उनको इत्मीनान दिलाया था कि अगर ऐसा करोगी तुम्हें कोई तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा भी नहीं होगा, और हम बच्चा जो है तुम्हारे पास इसको जो है वो पलटा कर वापस ले आएंगे। और मुफस्सरीन कहते हैं कि तकरीबन 3 महीने, बच्चे की पैदाइश के 3 महीने बाद तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जो है वो अपने बेटे को दूध पिलाया, और जब जो है वो जो जासूसी हो रही थी, क्योंकि बच्चा था और वो रोता था, अब छुपा के रखा हुआ है और फिर भी बच्चा जो है वो रोने लग जाए, और अब ये है कि उन्हें हुआ खतरा कि अब जो है ये बात किसी को पता ना चल जाए, तो अब जो है उन्होंने उसकी जान की हिफाजत के लिए ऐसा ही किया। फल तका ताहू, तो लाम काफ ता जो है इसका मतलब होता है कि जैसे गिरी पड़ी चीज जो है बगैर कसद और तलब के पा लेना और उसको उठा लेना, लुकता, इसको लुकता भी कहते हैं। ऐसे कहीं भी कोई गिरी पड़ी चीज जो है वो मिल जाए और उसको फिर उठा लिया जाए, इरादा कोई ना हो, बगैर कसद और तलब के किसी चीज को पाना, उठा लेना, उसको कहते हैं लुकता। फिर क्या हुआ, फल तका तहु, बस उठा लिया इसको, आलो फिरौना, कौमे फिरौन ने, ले यकूना लहुम अदुव हजना, ताकि इनके लिए दुश्मन हो और फिर बायस गम, ताकि वो इनका दुश्मन और इनके लिए रंज का सबब बने। यानी उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि जिस बच्चे को ये उठा रहे हैं, और यही बच्चा जो है कल इनकी हुकूमत के तख्त को जो है वो पलट देगा। तो क्या था कि जब वालदा ने टोकरी में डालकर, जो कश्ती नुमा टोकरी थी, वो समंदर में जब डाल दिया, दरिया में डाल दिया, तो अल्लाह का करना कि अल्लाह के फैसले के मुताबिक वो टोकरी बहती हुई फिरौन के महल के पास से गुजरी, और फिरौन की जो खादिम थी उन्होंने बच्चे को टोकरी से निकालकर महल में पहुंचाया। कह रहे हैं कि फिरौन की बीवी आसिया सैर कर रही थी, देख रही थी, कहा कि ये क्या चीज बहती आ रही है, किसी ने पकड़ा निकाला। बच्चे को देखते ही जो बीबी आसिया थी उन्होंने कहा ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, और ये तो मेरी और फिरौन की आंखों की ठंडक बनेगा, और जो है इसे हरगिज कत्ल ना किया जाए, और मुमकिन हो तो हम इसको अपना बेटा ही बना लें, हो सकता है आइंदा ये हमारे लिए कुछ मुफीद साबित हो। ये क्या था, ये अल्लाह का फैसला था जो तमाम फैसलों पर गालिब था। फिर क्या हुआ कि आखिरकार फिरौन के घर वालों ने उसे निकाल लिया, आलो फिरौना, तो जिसमें फिरौन के जो कनीज वगैरह थी और फिरौन की जो बीवी थी, बीवी आसिया, इन्होंने निकाल लिया, ये यकूना लहुम अदुवन, अल्लाह ताला कहते हैं मेरी प्लानिंग क्या थी, ताकि वो इनका दुश्मन बने, वह हजाना, और इनको रंज पहुंचाए, सब में रंज। इन्ना फिरौना वहा माना व जुनूदहुमा कानू खातेइन, वाकई फिरौन और हमान और इनके लश्कर अपनी तदबीर में बड़े गलत थे। खातेइन बड़ी खता करने वाले थे, बहुत ही जो है ये सताने वाले थे। वकालत इमरातु, और फिरौन की बीवी ने कहा, वकालत इमरातु फिरौना, और फिरौन की बीवी ने इससे कहा, कुर्रतु ऐनिल्ली वलक, कहने लगी कि कुर्रतु ठंडक है, ऐनिन आंखों की, ली मेरे लिए, वलक और तेरे लिए, कि ये बच्चा जो है ना ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है। ला तक्तुलूहू, तुम इसे कत्ल ना करो। क्यों? इसलिए कि फिरौन जो है, फिर उसे जब उसने बच्चे को देखा तो कत्ल करना चाहा, सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अब जो है बीच में बीबी आसिया आ गई और कहने लगी कि इसे जो है वो कत्ल ना करे। असा अयन फाना, असा शायद, अजब नहीं, अयन फाना कि ये हमारे लिए नफा दे, हमें फायदा दे, और नत्तखिज़हू या बना ले हम इसको वलदन अपना बेटा, वहुम ला यशुरून, और वो अंजाम से बेखबर थे। तो अब यहां पर जो है क्या बात बताई जा रही है कि मलका और बादशाह जो है आपस में उनकी गुफ्तगू चल रही है। बादशाह परेशान है, वो सोचते हैं कि, कहते हैं कि बादशाह परेशान था और उसने कहा कि ये जरूर किसी इसराइली का बच्चा है जो उसने कत्ल के डर से पानी में बहा दिया है, क्योंकि इर्द गिर्द मोहल्लों में बनी इसराइल रहते थे और उनके बेटे कत्ल किए जा रहे थे, तो किसी ने छुप छुपा कर इसे दरिया में डाल दिया, शायद इस तरह इसकी जान बचे और कोई इसे निकाल कर पाल ले। तो जो उसके मुशीर थे, गुलाम थे, उन्होंने कहा इसे कत्ल करना चाहिए। और लेकिन जो फिरौन की बीवी थी, आखिर वो औरत भी थी, और कहते हैं ये भी एक राय है कि हो सकता है वो बे औलाद हो, और बच्चा भी बहुत ही प्यारी शक्ल का था। सूरत तहा में है ना, सूरत मूसा के बारे, सूरत तहा में अल्लाह ताला हजरत मूसा के बारे में बताते हैं कि वल्कैतु अलैका महब्बतम मिनी, कि मैंने अपनी तरफ से तेरे ऊपर मोहब्बत डाल दी थी। बाज बच्चे ऐसे होते हैं मनमोहने, जो उनको देखता है तो प्यार करने लगता है, बड़ी प्यारी शक्ल वाले ना, बेख्तियार देखने वालों को मूसा अलैहिस्सलाम पर प्यार आ जाता था। अब औरत से भी रहा नहीं गया, उसने कहा इसे कत्ल ना करो, इसे लेकर पाल लो, जब ये हमारे यहाँ परवरिश पाएगा तो हम इसे बेटा बना लेंगे। तो इसे क्या पता कि मैं इसराइली हूं या कौन हूं, अगर ये इसराइली हो भी तो ये तो हमें, हम अपने आप को फिर आले फिरौन का एक फर्द समझेगा ना, तो इसकी जो काबिलियतें हैं बनी इसराइल के बजाय हमारे काम आएंगी। और आपने पीछे पढ़ा था ना सूरत यूसुफ में, कि इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको कुएं से निकालकर, आप सोचें जरा, कुएं से निकालकर अल्लाह ताला ने मिस्र के बाजार में पहुंचाया, और वहां पे अजीजे मिस्र ने उसको खरीदा, और फिर घर जाकर कहा कि इसको ख्याल रखना, इसको अच्छे से रखना, तो हो सकता है कि हम इसको बेटा बना लें, हमें कुछ फायदा दे। अब यहाँ पे यही बात जो है वो अजीजे मिस्र की बीवी कह रही है, महुमला यशरून, और उन्हें इसकी कोई खबर ना थी कि बनेगा क्या, होगा क्या। वह असबहा फुआद उम्मे मूसा फारिगा, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बड़ी अहम हकीकत की तरफ जो है वो इशारा किया है, और वो क्या है, वह असबहा और हो गया। और आपको मैंने ये बात बताई थी कि हालत की तब्दीली के लिए असबहा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने वो बच्चा तो समंदर के अंदर, दरिया के अंदर डाल दिया, लेकिन डालने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कि वालदा का दिल जो था वो बेकरार हो गया, असबहा हो गया, उड़ गया, फुआदू दिल उम्मे मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का फारिगा। और फारिगा का लफ्ज जो है इसके मानी है कि हर चीज और फिक्र से फारिग हो गया, खाली हो गया। अब एक ही फिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का गम दिल में समा गया, जिसको उर्दू में बेकरारी कहा जाता है। यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदों को कोई गम नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, अब मूसा अलैहिस्सलाम का जो गम था ना वो दिल के अंदर समा गया। वह असबहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। इनका आदत अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनकी कैफियत को बयान करते हैं कि इनका आदत बेशक करीब था, ला तुबदी बही, कि वो जाहिर कर देती इसको, कि करीब था कि वो ये राज खोल देती, ये बता देती कि मैंने ऐसे किया है। लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, जब तक के लौला अगर ना, अर्रबतना हम मजबूत करते, अला कल्बिहा इसके दिल को, ये तकूना मिनल मोमिनीन, कि वो हो मोमिनों में से, कि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। यहाँ पे मोमिन का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने पीछे जो वादा किया था आयत नंबर 7 में कि वला तखाफी वला तहजनी इन्ना रादूहू इलैकी वजाइलूहू मिनल मुरसलीन, तो यहाँ पे यानी अगर तुझे हमारे वादे पर यकीन है, तू उसको मानती है, तू उस पर ईमान लाने वालों में से है, फिर तू कोई गम ना कर। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम उसकी ये ढारस ना बंधाते, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, तो उनका दिल जो था उसकी ये हालत होगी थी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान जब कोई काम करता है ना, तो इतना बेचैन हो जाता है कि खुद ही उस राज को जो है वो फाश कर देता है। जैसे कातिल कत्ल करके किसी को भी पता नहीं होता कि किसने कत्ल किया है, लेकिन कातिल क्या करता है कि खुद ही जो है वो राज जो है वो फाश कर देता है। तो अब बेटे को छुपाकर जो है वो समंदर की लहरों के सपुर्द कर दिया था, लेकिन अब जो है वो गम होने लगा, परेशानी होने लगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेकरार थी, और ऐसी वैसी बेकरारी नहीं थी, सख्त किस्म की बेकरारी थी, कि इस सख्त किस्म की बेकरारी में वो अपने हाल को जाहिर कर देती हैं अगर हम इनके दिल को मजबूत ना करते। और मजबूत क्या, कैसे किया, कि हमारे वादे पे यकीन करो। तो फिर उन्होंने अपने दिल को संभाला और उन्होंने फिर तदबीर शुरू की। वकालत, और उन्होंने कहा, ले उखते ही, मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी यानी बच्चे की बहन से कहा, कुसी ही, ये ऑर्डर का सिगा है, कि चली जाए इसके पीछे पीछे। आप स्वाद स्वाद जो है इसके मानी होते हैं, जैसे निशान के लिए आता है, कदमों के निशान के लिए, तो निशाने कदम पर चलना। तो मुराद क्या है कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी में डालकर बहाया था, पानी में जो है वो छोड़ दिया था, तो कहा कि तुम इसके पीछे पीछे जो है वो चलती जाओ। और मूसा जो है इसके बारे में बाइबल और तलमूद से पता चलता है कि ये किब्ती जबान का लफ्ज है, इब्रानी जबान का नहीं, और इसके मानी है मैंने उसे पानी से निकाला। मुंह पानी को कहते हैं, ओशे का मतलब है बचाया हुआ, फिर जो चेंज होके मूसा बन गया ना, तो मुंह ओशे, तो मुंह पानी और ओशे बचाया हुआ, तो पानी से बचाया हुआ। तो वालदा ने बच्चे की बहन से कहा कि इसके पीछे पीछे जा, फबसुरत बेही अनजुनुबिन, और फबसुरत और फिर देखती रह बही इस बच्चे को यानी मूसा अलैहिस्सलाम को, अनजुनुबिन दूर से। जुनबी कौन होता है, जो तहारत से दूर होता है ना, तो दूर से इस टोकरी को, इस वो जो कश्ती नुमा टोकरी थी जो दरिया में बह रही थी, तो कहा कि इसके साथ साथ किनारे किनारे चलती जाना, लेकिन दूर से देखना, रहुम ला यशुरून, और दुश्मनों को पता ना चले कि इस टोकरे वाले बच्चे के साथ कोई है। तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की उम्र उस वक्त 10-12 साल की थी, और उसने बड़ी होशियारी के साथ भाई का पीछा किया और ये पता चला लिया कि ये बहता हुआ जो है कहाँ जाता है। उसने पता कर लिया कि ये फिरौन के महल तक जो है वो पहुंच चुका है। इसने आकर अपनी वालदा को जो है ये खबर भी दे दी। और उधर क्या हुआ कि जब बच्चा जो है वो फिरौन के दरबार में पहुंचा, और जब उन्होंने उसको पालने का इरादा कर लिया, तो अब वो किसी का दूध नहीं पीता था। बच्चा जो था वो किसी अन्ना की छाती को हाथ नहीं लगाता था, मुंह नहीं लगाता था। वहर्रमना अलैहिल मरा दिया, और हमने हराम कर दिया था अलैहि उस बच्चे पर, अल मरादिया दूध पिलाने वाली, यानी दूध पिलाने वाली की जो छातियां थी वो हमने हराम कर दी थी। असल में अल मरदाउन जो है ये इसके मानी है छाती से दूध पीना, दूध पीने की जगह छातियों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो अलमरदाऊ वाहिद है और अलमरादे इसकी जमा है। तो दूध पिलाने वाली की छातियां मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम कर दी थी, इसलिए वो किसी का दूध नहीं पीते थे, अल्लाह ताला ने इजाजत ही नहीं दी थी। फकालत, अब वो जो लड़की थी वो उस महल के इर्द गिर्द घूम रही थी, और अब जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की बेचैनी आप देखिए, और कि पता करा कि अंदर हुआ क्या, बना क्या, अब वो जीता है वो जीता नहीं है, उसको जिंदा रखा कि नहीं रखा। अब जो औरतें बाहर आ जा रही थी उन्हीं से पता चला कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, और जो है वो अब मलका जो है परेशान है, और वो चाहती हैं कि कोई ऐसी दाया या अन्ना का पता बताया जाए जो बच्चे की परवरिश करे, उसे दूध पिलाए। तो बाहर ये खड़ी हुई है बच्ची, और अब वो जो बाहर उस महल से औरतें बाहर निकली हैं जो लौंडी गुलाम वगैरह, तो उनसे कहती हैं हल अदुल्लुकुम, क्या मैं बताऊं तुमको, क्या मैं खबर दूं तुमको, अला अहले बैतिन घर वालों की, यकफुलूनहू जो पाल लें इसको, जो इसकी कफालत करें, किसी ऐसे घर का पता बताऊं तुम्हें, वहुम लहू नासिहून, और जो इसको खैरखाही के साथ रखें। यानी इससे क्या बात पता चलती है कि वो मुखलिस हो, शफकत के साथ इसे रखे। नसीहत, नुसुन का लफ्ज जो है ये खैरखाही के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फरदत ना हूं इला उम्मे ही, अल्लाह ताला कहते हैं फिर इस तरह हम मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी वालदा के पास वापस पलटा कर ले आए, कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि इसकी आंखें ठंडी हो। पीछे वादा भी किया था ना अल्लाह ताला ने आयत नंबर 7 में, तो यहाँ पे कि हम उसको पलटा कर ले आए इसके पास ताकि उसकी आंखें ठंडी हो। दो बातें पूरी हो गई, भला ताहजना और वो गमजदा ना हो, नंबर 3 भले तालमा अन्ना वादल्लाही हकुन, और वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था, कि अल्लाह जो वादा करता है तो अल्लाह का वादा हक होता है। वलाकिन अक्सर हुम ला यालमून, मगर अक्सर लोग जो है वो इस बात को मानते नहीं है, अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं है। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि अल्लाह जो वादा करता है वो सच करता है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, जो शख्स अपनी रोजी कमाने के लिए काम करे और इस काम में अल्लाह की खुशनुदी पेशे नजर रखे, इसकी मिसाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की सी है कि उन्होंने अपने ही बेटे को दूध पिलाया और इसकी उजरत भी पाई। तो अगर कोई शख्स जो है वो कमाई करता है अपने और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए, और वो अल्लाह की रजा को भी सामने रखता है, सच बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, और जिसके हलाल कमाकर फर्ज भी अदा करता है, और रोजी कमाने पर अल्लाह के यहाँ से अजर भी पाता है, रोजी भी कमाई और अजर और सवाब भी पाया, और यही हाल जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का था। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से वादा किया था वो पूरा कर दिया। वहुम ला यालमून, और लोगों को, वला किन्ना अक्सर हम ला यालमून, और अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं, इन लोगों को कानों कान उसकी खबर भी नहीं होती। तो आपने जो है आपने पढ़ा आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक, एक दौर के मिस्र में फिरौन किस तरह से जुल्म कर रहा था, फिर आयत नंबर 7 से लेकर जो है वो 13 तक आपने पढ़ा कि उस जुल्म में से ही अल्लाह ताला ने किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए राह निकाली, और अल्लाह ताला बनी इसराइल से निकाल कर उसे फिरौन के महल के अंदर ले आए, तो जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे कोई चख नहीं सकता। तो इससे क्या बात पता चलती है कि तकदीर पर ईमान लाना चाहिए और तदबीर जरूर करनी चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो आसानी पैदा कर दी। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 14 से एक और दौर शुरू होता है, वलम्मा बलगा अशुद्दहू, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुंच गए। अशुद्दा जो है शीन दाल दाल, ये उरूज कुवत जवानी के लिए इस्तेमाल आता है, शिद्दत के लिए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी पूरी जवानी की उम्र को पहुंचे, वस्तवा, और वो वस्तवा और मुकम्मल हो गया, यानी उसकी नशोनुमा मुकम्मल हो गई, जिस्मानी जहनी नशोनुमा हो गई। कोई कहते हैं कि उम्र 18 साल है और कोई कहते हैं कि 40 साल। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी शबाब को पहुंचे, जवानी को पहुंच गए। آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. تو حکم سے مراد ہے حکمت, دانائی, فہم و فراست, قوت فیصلہ, اور علم سے مراد ہے دینی اور دنیوی علوم. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے یہ ساری تعلیمات سے نوازا, ایک طرف کہ شہزادے کے طور پر وہ محل کے اندر انہوں نے دنیا کے علم حاصل کیے, جو اس وقت مصر کے اندر جو تھے وہ معمول تھا, لوگ حاصل کرتے تھے, اور دوسری طرف جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے باپ دادا کا علم جو ہے اس کی تعلیمات سے واقف کروایا, جیسے حضرت یوسف, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان سے بھی انہیں واقفیت حاصل ہو گئی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ عطا کرنی تھی. تو یہاں علم سے مراد نبوت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ, پھر ایک دن کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ داخل ہوئے ایک دن شہر میں, عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ, جب جو ہے وہ غفلت میں تھے. حینی جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وقت, عَلَى حِينٍ, ایسے وقت میں وہ شہر میں داخل ہوئے کہ غفلتن من اہلیہا, کہ شہر والے جو تھے وہ غفلت میں تھے, یعنی صبح سویرے کا وقت تھا, گرمی میں دوپہر کا, یا سردیوں میں رات کا, بہرحال جو بھی وقت تھا, تو اہل شہر جو تھے وہ کیا تھے کہ اپنے گھروں میں تھے, سڑکیں سنسان تھیں, شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا. فوجدہ فیہا رجلین فیقتتلان, فوجدہ فیہا, پس موسیٰ علیہ السلام نے اس میں پایا رجلین, دو آدمیوں کو, یعنی اس وقت سڑک پر یا راستے میں دو لوگوں کو پایا, یقتتلان, وہ دونوں لڑ رہے تھے. تو باقی سارے شہر والے جو تھے وہ اپنے گھروں میں تھے, سڑکوں پر سناٹا تھا, دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, ایک اس کی اپنی قوم کا آدمی تھا, شیعتی گروپ, شین یا عین اس کا روٹ ہے, ایک ان کے اپنے گروہ میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا, وھذا من عدوہ, اور دوسرا دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا یعنی قبطی تھا, فرعون, فرعونیوں میں سے تھا. فاستغاثہ, پس موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی. فاستغاثہ, پس استغاثہ کیا, فریاد کی, ہو موسیٰ علیہ السلام سے, اللہ زی, اس شخص نے جو من شیعتہ ہی, ان کے گروہ میں سے تھا, جو بنی اسرائیل میں سے تھا, جو موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتا تھا, اس نے فریاد کی, علی خلاف, اللہ زی, اس شخص کے, من عدوے ہی, جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو دشمن قوم یعنی فرعونیوں کے خلاف بنی اسرائیل کے آدمی نے مدد مانگی, کس سے, موسیٰ علیہ السلام سے. فَوَقَذَهُ, پس اس نے گھونسا مارا, اور وَوْ قَافْزَا, اس کا روٹ ہے, اس کے معنی ہے تھپڑ مارنا, گھونسا مارنا. تو عام طور پر گھونسا مارا جائے یا تھپڑ مارا جائے تو اس سے موت تو نہیں واقع ہوتی, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا, اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ مارا, دھکا دیا, کچوکا لگایا, یہ سارے معنی دیتا ہے یہ لفظ. تو جب انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا, فقدا علیہ, اور اس کا کام تمام کر دیا. تو کیا ہوا کہ وہ شخص جو تھا وہ مر گیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ھذا من عمل الشیطان, کہ یہ شیطان کا عمل ہے, انہو عدو مدل مبین, کہ بے شک شیطان جو ہے عدو دشمن ہے, مدل سخت گمراہ, مبین کھلا, بے شک شیطان جو ہے سخت دشمن اور کھلا گمراہ ہے. تو یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ غلطی ہو گئی, کیونکہ یہ قتل عمد نہیں تھا بلکہ قتل خطا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس کام کو شیطانی فیل قرار دیا کہ غلطی سے ایسا ہو گیا, میرا مقصد تو یہ نہیں تھا, میرا مقصد قتل کرنا تو نہیں تھا, یہ تو کوئی شیطانی چال ہے, اور شیطان تو سخت کھلا گمراہ ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے, فاغفر لی, آپ مجھے بخش دیجئے, آپ میری مغفرت کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے, میری ستر پوشی کر دیجئے, آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا, فاغفر لی فغفر لہ, بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا, ان کو معاف کر دیا, پردہ ڈال دیا, इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो यहाँ इसके दो मानी हैं, एक तो ये कि अल्लाह ताला ने इनका कसूर माफ कर दिया, और दूसरा ये कि पर्दा भी ढांक दिया। किप्टी कौम के किसी फर्द जो है, कोई वो शख्स वहां से गुजर ही नहीं रहा था कि किसी को पता चलता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है, और मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से उस जगह से निकल गए। काला रब्बी बिमा अनअमता अलैया फलन अकूना जहीरा लिलमुजरमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि ऐ मेरे रब, बिमा अनअमता, ये जो तूने मुझ पर एहसान कर दिया है, अलैया मुझ पर, फलन अकूना, पस मैं हरगिज नहीं बनूंगा, जहीरन मददगार, लिल मुजरिमीन, जुर्म करने वालों का, कि आपने मुझ पर जो मेहरबानी की है, आइंदा कभी मैं किसी मुजरिम की मदद नहीं करूंगा। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया था, तो इससे जो है वो कुछ बातें सामने अमल की आती है। नंबर एक, कि मोमिन को जालिम की मदद से काबिल इज्तनाब करना चाहिए, वो जुल्म करने वाला अपनी कौम का हो या किसी और की कौम का। तो जो जालिम है ना, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जैसे एक कातिब ने आमिर शाबी से पूछा कि ऐ अबू अमर, बस ऐसे अहकाम लिखकर मैं जारी करने का जिम्मेदार हूं, मैं फैसले करने का जिम्मेदार नहीं हूं, क्या ये रिस्क मेरे लिए जायज है? मतलब वो ऐसे बातें लिखता था जो हुकूमत कह देती थी। और जैसे किसी बेगुनाह के कत्ल का फैसला, तो कातिब का काम क्या था? लिखना। तो उसने किसी स्कॉलर से पूछा कि अगर मैं ऐसे काम लिखता हूं तो क्या ये रिस्क मेरे लिए जायज है? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी बेगुनाह के कत्ल का फैसला किया जाए और वो तुम्हारे कलम से जारी हो सकता है किसी का माल नहक जब्त किया जाए, या किसी का घर गिराने का हुक्म दिया जाए और वो तुम्हारे कलम से जारी हो। फिर इमाम मौसूफ ने यही आयत पढ़ी, जिसे सुनते ही कातिब ने कहा, आज के बाद मेरा कलम बनू उमैया के अहकाम जारी करने में इस्तेमाल ना होगा। इमाम ने कहा, फिर अल्लाह भी तुम्हें रिस्क देने से महरूम ना करेगा। तो ऐसा होता है कि जब इंसान, जो हुकूमत गलत होती है या जालिम लोग होते हैं, तो बेशक उनका कातिब भी होता है, सेक्रेटरी होता है, ऑफिस सेक्रेटरी, तो वो जो कुछ लिखता जाता है, फैसला कोई और करता है, तो क्या है कि वो भी जुल्म का साथ दे रहा होता है। जैसे एक मशहूर ताबई थे, हजरत अता बिन अबी रबा, उनसे एक साहब ने अर्ज किया, मेरा भाई बनू अमिया की हुकूमत में कूफे का गवर्नर है, जो कूफे का गवर्नर है उसका वो सेक्रेटरी है, तो मामलात का फैसला करना इसका काम नहीं है, अलबत्ता जो फैसले किए जाते हैं वो उसके कलम से जारी होते हैं। ये वो नौकरी करे कि नहीं? अगर वो नौकरी ना करे तो गरीब हो जाए। हजरत अता ने जवाब में यही आयत पढ़ी और फरमाया, तेरे भाई को चाहिए कि अपना कलम फेंक दे, रिस्क देने वाला तो अल्लाह है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनका ये वाकया भी बताया जाता है कि उन्हीं की तलकीन पर मंसूर के कमांडर इन चीफ हसन बिन कहतबा ने ये कहकर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था कि आज तक मैंने आपकी सल्तनत की हमायत के लिए जो कुछ किया, अगर ये अल्लाह की राह में था तो मेरे लिए बस इतना ही काफी था है, अगर ये जुल्म की राह में था तो मैं अपने नामा-ए-माल में मजीद जरायम का इजाफा नहीं करना चाहता। तो ये जो आयत नंबर 17 है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तरफ आयत नंबर 16 में माफी मांगी, दूसरी तरफ जो वादा किया कि आइंदा मैं किसी मुजरिम का मददगार नहीं बनूंगा, जालिम का मददगार नहीं बनूंगा, तो आपको भी अपना जायजा लेना चाहिए, हमें भी जायजा लेना चाहिए कि अमली जिंदगी में ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुर्सी, आपकी दौलत, आपकी हुकूमत, आपकी सलाहियतें और आपकी, हाँ, आपकी गवाही जो है वो जालिम को वजनदार बनाए या आप उसकी हिस्सेदार बन जाएं, तो ये जरूर जायजा लेना चाहिए। तो बहरहाल, अब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो क्या कर रहे थे कि वहां से भाग रहे थे, जा रहे थे। फअसबह फिल मदीनती खाइफन, फअसबह, बस वो हो गए, यानी सुबह का वक्त हो गया, फिल मदीनती शहर में, यानी सुबह सवेरे वो हो गए खाइफन, डरते हुए। तो दूसरे दिन वो सुबह सवेरे डरते हुए जा रहे थे। यतरक्कबू, यतरक्कबू का मतलब होता है खतरा भांपता हुआ। रकब जो है, ये रकबत उन गर्दन को कहते हैं ना, आम गर्दन के लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो गर्दन उठाकर इधर उधर देखना, यानी भांपना, जैसे रकीब नहीं होता दाएं बाएं देखता है, तो अब क्या कर रहे थे, ये तरक्का वो खतरे को भांप रहे थे, वो देख रहे थे। फैजल लजी, बस अचानक, अल्लजी वो शख्स, इस तनसरहू, मदद मांगी थी इससे, बिल अमसी, कल को, यानी वही जो बनी इसराइल का शख्स था ना जिसने कल इसे मदद के लिए पुकारा था। अमसी जो है वो यस्टरडे को कहते हैं, और गदन टुमारो, आने वाला कल। तो जिसने कल मदद के लिए पुकारा था, यस्तस्रिखुहू, फिर वो उसे पुकार रहा है। यस्तस्रिखुहू, चीख कर बुलाना, स्वाद राखा जो है पुकारना, चीखना, फरियाद करना। तो वो क्या कर रहा था, चीख चीख कर दोबारा उसको मदद के लिए पुकार रहा था, किसको, मूसा अलैहिस्सलाम को। काला लहू, मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, इन्नका लगवी मुबीन, तू तो बड़ा ही बहकावा आदमी मालूम होता है, झगड़ालू आदमी मालूम होता है, यानी रोज तेरा किसी ना किसी से झगड़ा होता है, कल एक शख्स से तू लड़ा था, आज फिर लड़ रहा है। तो यहाँ पर गवियुन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और इसके मानी है गुमराह, गैया है ना, उसी से है गुमराह। मुबीन, खुला। फलम्मा अन अरादा, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया, अय्यफ्तिशा, कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पकड़ लें, बा पा शीन जो है इसके मानी होते हैं कि पकड़ लेना, जबरदस्ती जो है वो छीन लेना, स्नैश कर लेना जैसे, ताकि वो पकड़ ले, बिल्लजी, बिल्लजी उस शख्स को जो हुआ वो अदुवन, दुश्मन है, लहुमा, इन दोनों का। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तरफ तो बनी इसराइल के आदमी को समझाया कि तू अजीब लड़ाकू किस्म का आदमी है, कल लड़ाई हुई थी और आज फिर लड़ा है, लेकिन आपने दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करना चाहा, क्यों, बिल्लजी हुआ अदुवन लहुमा, जो इन दोनों का दुश्मन था, यानी इस बनी इसराइल के आदमी का जो लड़ रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम का भी। क़ाला या मूसा, तो वो पुकार उठा। तो अब क्या है कि कहते हैं कि ये पुकारने वाला जो है वो इसराइली था, जिसकी मदद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े थे। तो क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डांटने के बाद मिस्री को मारना चाहा, तो इसराइली समझा कि आप उसे मारने लगे हैं, उसने चीखना शुरू कर दिया। तो वो पुकार उठा, काला, वो बोला, या मूसा, ए मूसा, अतुरीदु अन तक्तुलनी, क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है, कमा कतलता नफसम बिल अम्स, जिस तरह कल एक शख्स को तूने कत्ल कर दिया था। इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्दी, तू तो इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता है। और जब्बारन जो है इसके मानी है जबरदस्त बनकर, जबर से, यानी बड़ा बनकर, जबरदस्त, जब्बार बनकर रहना चाहता है। फमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन, और तू कुछ भी इस्लाह नहीं चाहता। वजा रजुल मिन अक्सल मदीनती, इसके बाद एक आदमी शहर के परले किनारे से भागता हुआ आया। अक्सा जो है ये दूर के किनारे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अक्सा, काफ स्वाद, वो रूट है, दूर के किनारे को कहते हैं। तो दूर के किनारे से एक शख्स भागता हुआ आया, यसा दौड़ता हुआ, सही करना ना, दौड़ता हुआ आया। काला, कहने लगा, या मूसा, ए मूसा, इन्नल मला, बेशक सरदार जो है, यह तमेरूना, मशवरा कर रहे हैं, और जो है ये या तमेरूना, हमजा मीमरा, ये अमर यानी अहम काम को भी कहते हैं, और ये लफ्ज मशवरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि या तमेरूना इसका मतलब है वहां मशवरा करना, कि वो लोग मशवरा कर रहे हैं, बिका तेरे बारे में, ये यकतुलू का, ताकि तुझे कत्ल कर दें, यानी सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं। फखरुज, पस निकल जा, इन्नी लका मिनन्ना सहीन, बेशक मैं जो है वो तेरे खैरखाहों में से हूं। कहते हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, इसने इनसे कहा कि फिरौन की महफिल में तेरे कत्ल की साजिश हो रही है, और तुम फौरन किसी तरह इस शहर को छोड़ दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते वहां से निकले, ताकि कहीं पकड़ ना लिए जाएं और कत्ल ना कर दिए जाएं। और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम शहर से निकले, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, फखरजा मिन्हा खाइफन यतरक्कबू, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे खौफ जदा होकर डरते हुए वहां से निकले, बस्ती से, मिस्र से, यतरक्कबू, भांपते हुए, इधर उधर देखते हुए। काला रब नजनी मिनल कौम ज़ालिमीन, और उन्होंने दुआ की है, मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां से निकलते वक्त फिरौन, फिरौनियों और हर जालिम से निजात की दुआ मांगी। और वैसे आप सूरत अशौरा में जो है ये पढ़ चुके हैं कि फिरौन को और उसकी कौम को अल्लाह ताला ने जालिम कौम का लकब दिया है आयत नंबर 10 में, वइज़ नादा रब्बुका मूसा अनीतिल कौम ज़ालिमीन। तो जालिम कौम किसका नाम है? कौम फिरौन का। तो अब यहाँ पर भी यानी इससे मुराद फिरौन की कौम भी है और तमाम वो लोग हैं जो कि जुल्म करने वाले हैं, हाँ वो जैसे अपने लोगों में से हों या कि दूसरे लोगों में से हों। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह तू मुझे जालिमों की गिरफ्त से बचा ले। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मुझे सीधे रास्ते की तरफ जो है मेरी रहनुमाई कर दे। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ही है जो कि हदायत देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था, बल्कि अचानक हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने जो है वो मिस्र को छोड़कर जो है वो निकल खड़े हुए और उस वक्त उन्होंने ये दुआ भी की, रब्बि नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। और हमें भी अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए, हम सबसे राजी हो जाए। और आज के सबक में जो बातें हमारे सामने आती हैं उनमें एक तरफ जो है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर सख्त हालात गुजरे तो पता चलता है कि ईमान लाने वालों को अल्लाह ताला अजमाया ही करते हैं। दूसरी बात ये पता चलती है तकदीर जो है वो अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाना चाहिए, अल्लाह के फैसलों पर, और फिर साथ साथ अपने हालात को बदलने के लिए जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने तदबीर की, तदबीर जरूर करनी चाहिए। मुख्तलिफ हालात में ऐसे मसाइल पेश आते हैं कि बिल्कुल इंसान मायूस हो जाता है, तो हालात कितने ही जो है वो मुश्किल क्यों ना हो, ना मवाफिक क्यों ना हो, इसके बावजूद जो है अल्लाह का ताल्लुक बिल्ला और ईमान ये सिखाता है कि मुसलमान कभी मायूस नहीं होता, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा। और देखें कि अल्लाह ताला ने उनसे किया हुआ वादा फिर पूरा भी किया। तो दूसरी बात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का बेहतरीन किरदार है। तो आप ये बताइए कि मुश्किल हालात में क्या आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखती हैं? आप अपना जायजा लीजिए। नंबर दो, क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरह अल्लाह पर तवक्कुल रखती हैं? क्या आप तकदीर जो है तकदीर के फैसलों को मानती हैं कि ये तकदीर में था कि जो मुझ पर आजमाइश है सारी कोशिशों के बावजूद भी? फिर इसके साथ ही नंबर चार जो अहम बात है कि जुल्म का कभी साथ ना देना, हाँ वो अपने ही क्यों ना हो, हमेशा हक का साथ देना। और आप अपनी जिंदगी का जायजा ले, कहीं आप जुल्म का साथ तो नहीं दे रही। और नंबर पांच जो अहम बात है कि मोमिन कभी गलती करता नहीं, गलती हो जाती है, तो जो गलतियां आपसे हो गई हैं अब तक की जिंदगी में, क्या आप उस पर इस्तग़फ़ार करती हैं? रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ये दुआ करना और सैयदुल इस्तग़फ़ार करना। और फिर नंबर छह जो अहम बात है वो क्या है कि झगड़ालू लोगों को पहचानना चाहिए, कुछ लोग बड़े झगड़ालू होते हैं, कहीं आप ही तो नहीं है, कहीं मैं ही तो नहीं हूँ ये भी। और जो झगड़ालू लोग हैं बेशक वो दोस्त हों या औलाद हों या अपने हों, तो उनका साथ ना देना। फिर इसी तरह जो है ये एक अहम बात हमें पता चलती है कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहां पे जो है वो सुलह सफाई का तरीका इख्तियार करना चाहिए, इसलाह करनी चाहिए और हक का साथ देना चाहिए। फिर इसी तरह ये बात भी पता चलती है कि मुश्किलात से निकालने के लिए तदबीर भी करनी चाहिए अपने आप को और अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए। और दुआ मांगी क्या थी मूसा अलैहिस्सलाम ने? रब्बे नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। और अगर किसी को मुश्किल में देखें और पता चले कि इसके ऊपर कोई ज्यादती करने वाला है, तो जैसे वो एक शख्स जो भागता हुआ आया था मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया, तो इस तरह साथ भी देना चाहिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।